السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. रमज़ान मुबारक में जहाँ हम इबादात पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर ये ना भूलिएगा कि दूसरे लोगों के भी हमारे ऊपर हकूक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो में से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफ़ामंद हो। जब हम लोगों के लिए नफ़ामंद होने की बात सोचते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि सदका बॉक्स में सदका डाल देना या किसी की वैसे माली इमदाद कर देना, यही बस बहुत बड़ा हमने नफ़ा किसी के लिए कर दिया। हालांकि नफ़ा देने की बहुत सारी सूरतें हैं, सदका के लिए अलग से अहादीस हैं। और फ़ायदा देना किसी को, अगर हम बेस्ट बनना चाहते हैं तो हमारी ज़ात ऐसी हो कि जिधर हम जाएं हम लोगों के लिए फ़ायदा मंद बने, लोगों के लिए तकलीफ़ वाले ना बने। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहें। तो हमारी ज़ुबान से भी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारे हाथ से भी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, बल्कि क्या होना चाहिए, नफ़ा होना चाहिए। बेस्ट का तो ये दर्जा है कि नफ़ामंद बने। और नफ़े की बहुत सारी सूरतें, आप मसलन है किसी को उसके पैरों पर खड़ा करने में मदद कर देते हैं, वो भी नफ़ा है। आप किसी मरीज़ की आदत कर देते हैं, वो भी नफ़ा है। आप किसी को अच्छा मशवरा दे देते हैं, वो भी नफ़ा है। यानी नफ़ा देने की तो बहुत सारी सूरतें। अगर हम ये ठान लें कि हमने जहाँ होना है हमारी ज़ात से किसी ना किसी को हम फ़ायदा पहुँचा दें, किसी को कोई चीज़ गिरी हुई है वो हम उठा के उसको पकड़ा देते हैं, वो भी नफ़ा है। किसी के ग्रोसरी या उसकी गाड़ी तक पहुँचा देते हैं, वो भी नफ़ा है। किसी को उसका हाथ थाम के उसकी जगह उसकी मंजिल तक पहुँचा दें, वो भी नफ़ा है। इसको कोई अच्छी चीज़ बता देना, मसलन आपने कोई खाना पकाने का ही हुनर बता दिया, किसी को कोई कारोबार करने का हुनर किसी ने बता दिया, इस चीज़ों में जिसमें हम बहुत बुखल करते हैं, हम माली इमदाद दे देंगे लेकिन कभी किसी को इस तरह का फ़ायदा पहुंचाने का नहीं सोचते जिसके अंदर के हम सोचते हैं कि मेरी चीज़ किसी और के पास ना चली जाए, हालांकि उससे हमें कोई भी कमी नहीं आएगी। मसलन है कि किसी को ऐसी कोई चीज़ बता देना, कोई ऐसा नुस्खा बता देना, कोई ऐसी रेसिपी बता देना, या किसी को काम कारोबार के कोई राज बता देना, वो दूसरों तक पहुंचाना, हम सोचते हैं कि इसके अंदर मैं क्यों दूं, तो ये भी नफ़ा पहुंचाना है। बाज़ दफ़ा किसी को आपसे कोई माली इमदाद नहीं चाहिए होती, लेकिन किसी को कोई अच्छी बात चाहिए होती है आपसे कि आप उसको कोई सही डायरेक्शन दे दें, कोई सही डायरेक्शन बता दें, या अगर हम बहुत ही करते हैं तो थोड़ी सी एक बात बता दी, पूरी बताई भी नहीं कि इसको ज़्यादा ही ना फ़ायदा हो जाए। ख़ास तौर पे हम ये अपने साथ वालों के साथ करते हैं, गरीब के ऊपर तरस खा के उसको कुछ दे देना, वो तो सारे ही करते होंगे, लेकिन अपने साथ वाले को कोई ऐसी बात बता देना जिससे उसका फ़ायदा हो सकता हो, उसमें हम बहुत बुखल करते हैं। इसलिए कि हमें ये होता है कि ये हमसे ज़्यादा ना कहीं बढ़ जाए, तो इसी को छोड़ना है हमने और नफ़ा बनना है। हम जहाँ कहीं फ़ायदा पहुँचा सकें, हमारी इस्तात है, हमारी इतनी ताकत है और हम कर सकते हैं, तो उसको कर डालें। क्योंकि यही वो गवाहियाँ हैं क़यामत के दिन, यही लोग जिनको आपसे फ़ायदा पहुंचा होगा वो आपके लिए कितनी अच्छी गवाहियाँ होंगी। और दुनिया से चले गए तो आपके पीछे दुआएं देने वाले वो लोग होंगे जिनको आपने किसी ना किसी तरह कभी फ़ायदा पहुंचाया, और वो आपके जानने वालों में से ही होंगे। अगर इन्हीं को हम पीछे रखते हैं कि हमारे जानने वालों में कोई ऊपर ना जाए, अगर मुझे कोई कारोबार आता है, मुझे कोई काम आता है, तो वो कारोबार कोई और भी शुरू करना चाहता है, हम उसको डिस्करेज करते हैं, नहीं 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 ये मत करना, ओके इसके अंदर तो कोई फ़ायदा ही नहीं, ओके हम नहीं चाहते कि वो भी वही चीज़ करे। ये सिर्फ छोटी सी मिसालें हैं, आप इसको कयास कर लें हर चीज़ के ऊपर जो भी आपके पास है। कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई इल्म, कोई ना कोई बात तो होगी। मुझे तो ऐसे लगता है कि सिवाय दीन के इल्म के, हर इल्म में लोग बुखल करते हैं दीन का इल्म पहुंचाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसके इतने बड़े दर्जे हैं। वो सिर्फ है कि वो आगे पहुंचाने के अंदर लोग कोई बुखल नहीं करते, जहां तक मुझे उम्मीद है। लेकिन बाकी तमाम उलूम में कहते हैं कि हम किसी को क्यों बता दें, अगर मुझे कोई भी इल्म अच्छा आता है, मुझे मैथ अच्छा आता है, मुझे साइंस अच्छी आती, मैं किसी को क्यों सिखा दूँ। अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो रही है मुझसे पूछ लेना, मैं ये क्यों कहूँ। तो पैसों के लिए हाँ हम कर देंगे, लेकिन वैसे हम किसी के लिए नफामंद नहीं बनना चाहते। तो इसका ध्यान रखिए कि कहाँ आप किसी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और कहाँ आप अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। आप मस्जिद जाते हैं, वहाँ कोई गिरी पड़ी चीज़ है वो उठा के ऊपर रख दें, कोई गंद कहीं पड़ा हुआ है, कहीं जूतियाँ पड़ी हुई हैं आपने वो उठा के रख दी। आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे काम जो हमें लगते हैं ये छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। जबकि आप इनको देखें, इनके अजर तो कितने बड़े ये काम हैं। देखें आप, मखलूक की खिदमत करना, या मसलन मैंने जैसे आपको कहा किसी बीमार की ये आदत कर देना, जो सुबह को करेगा किसी मुसलमान भाई की बीमार पुरसी, 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक उसके लिए भलाई की और रहमत की दुआ करते हैं। अगर अगर शाम को करेगा तो शाम से सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और जन्नत में उसको जन्नत के चुने हुए फल अता किए जाएंगे। आप देख लें कि कितनी बड़ी बात है। जब आप वहाँ पे जाएं, उसका हौसला बढ़ाएं, उससे कोई मायूसी की बात ना करें, उसके साथ अच्छी बातें करें, उसको उम्मीद दिलाएं, और उसके कोई काम है तो वो कर डालें। तो इसी तरह आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो नमाज, रोज़ा, सदका और खैरात से भी ज़्यादा अफजल है। लोगों ने कहा क्यों नहीं, आपने फरमाया वो ये है कि लोगों के दरमियान सुलह करा दो। याद रखो, लोगों के दरमियान फसाद कराना दीन का सफाया कर देता है। जो मैंने अभी आपको बात बताई ना कि मुसलमान के हाथ से दूसरे लोग उसके हाथ से भी और उसकी जुबान से भी महफूज रहने चाहिए, यानी हम ये जो जिसको हम कहेंगे ना कान भरना, ये नहीं हमने काम करना। अब इसके अंदर किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन कान भर दिए। मसलन है कि माँ ने बेटे के कान भर दिए उसकी बीवी के खिलाफ, या बीवी ने खामिंद के कान भर दिए उसकी माँ के खिलाफ, या बहन ने बहन के कान भर दिए उसके शौहर के खिलाफ, या माँ ने बेटी के कान भरे उसके खामिंद के खिलाफ। यानी कान भरने में दोस्तों के ही एक दूसरे के खिलाफ कान भर देने, वो तो तुम्हारे लिए ऐसे कहती है, वो ऐसे करती, ये तो हम अपनी जुबान से तो नहीं महफूज कर रहे, ये हम नफामंद तो नहीं बन रहे, हम तो उल्टा नुकसानदेह बन रहे। और इस हदीस के मुताबिक तो लोगों में सुलह कराना कितना बड़ा नेकी का काम है, और फसाद कराना दीन का सफाया कर देता है, शेव कर देता है दीन को। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कई बातों से कहीं ऐसा नुकसान पहुंच रहा हो। इतनी बड़ी बातें, ये तो लोगों के साथ मामलात की बातें हैं ना, इनमें हमने फायदा मंद बनना है। फायदा मंद नहीं बन सकते तो कम से कम नुकसान देने वाले तो ना बने कि हमारी बातों से किसी के घर के अंदर फसाद खड़ा हो जाए, कोई किसी से बात करना बंद कर दे, या किसी का दिल दूसरे से मैला हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स को जन्नत के किनारे पर एक घर की जमानत देता हूं जो हक पे होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। जन्नत के किनारे पे एक घर की जमानत है, हक पे आप, लेकिन आप झगड़ा छोड़ देते। इस तरह जो किसी दूसरे के ऐब की पर्दादारी करता है, अल्लाह ताला आखरत में उसकी पर्दादारी करता है। ये सारी क्या चीजें हैं? सारी तो वो चीजें जो इंसानों के साथ मामलात है ना, जो बंदों के साथ भलाई करने की चीजें हैं ना, इनमें ना तो नमाज है कोई, इनमें ना कोई रोजा है, ना कोई इनमें जिक्र अजकार है। ये सब चीजें हैं जो दूसरे के साथ भला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए वो जमात जो सिर्फ जुबान से ईमान लाई है, ईमान अभी तुम्हारे दिलों में नहीं उतरा, अपने मुसलमान भाइयों की एक दूसरे से गीबत ना किया करो, ना एक दूसरे के ऐब तलाश किया करो। जो किसी के ऐब तलाश करने के पीछे पड़ जाता है, अल्लाह ताला उसके ऐब खोल देता है और उसको उसके घर में रुसवा कर देता है। अब किसी के ऐबों के पीछे ना जाए कि इसने घर में क्या पकाया है, क्या करते हैं ये घर में, कैसे रहते हैं ये, किधर जाते हैं, इनकी कोई बात मैं लोगों को बताऊं ऐसी के जो जो मैंने इनके घर में देखी हो। तो ये ना हो कि नेकियां हमारी जो हम कर रहे हैं आजकल कोशिश, वो सारी पानी में बह जाए, इसी तरह दोगला इंसान। ये भी देखिए, ये सारी चीजें इंसानों के साथ, दोगला जो दो मुंह वाला होता है, इधर आया तो इसकी तारीफें, उधर गया तो उसकी तारीफें, पीठ पीछे चाहे उनकी बुराइयां कर रहा हो लेकिन मुंह पे आता है तो इसके पास बैठा तुम बहुत अच्छे और फलां सारे बुरे, और उनके पास जाता है तो वो तुम सबसे अच्छे हो, वो तो देखो ऐसे, यानी जिधर चल गया उसका बन गया। तो ये सारी बहुत खतरनाक बातें हैं। दोगले इंसान के लिए कहा गया कि वो बदतरीन इंसान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जो एक के मुंह पे कुछ कहता है दूसरे के कुछ कहता है। चुगलखोर को फरमाया कि चुगलखोर तो जन्नत में ही नहीं दाखिल हो सके, चुगली करना क्या है, यानी आपके किसी के पास गए और आपने उसको कहा कि देखो जी ऐसे वो फलां तो तुम्हारा ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था, अब उसका दिल उससे खराब हो गया, उसने बोल चाल, जिसको मैंने कहती हूँ कान भरना, चुगलखोरी का दूसरा मतलब कान भरना, कान भर दिए उसके, अब वो उससे बदजन हो गया या उससे बोलचाल बंद कर दी और हमें चैन आ गया, सुकून आ गया कि चलो ठीक है। तो ये तो फसाद कराना तो दीन को रहने ही नहीं देता, सफाया कर देता है दीन का। तो उसके बाद फिर कोई नेकी भी करेंगे तो कैसे वो कबूल होगी? और आप सबको वो हदीस पता है कि वो जो आदमी एंटर हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जन्नती है, तो उनका क्या उनकी खूबी थी कि वो किसी के लिए कीना नहीं रखते थे, किसी के लिए बुग्ज नहीं रखते थे। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि हमें अपने दिलों से निकालनी है, जो सारी इंसानों के साथ हैं, वो किसी के मतलब है नमाज रोजे से उनका ताल्लुक नहीं है। जैसे सुफियान बिन दीनार बयान करते हैं कि मैंने अभी बशीर से कहा कि मुझे असलाफ के आमाल के बारे में कुछ बताएं, कि जो हमारे नेक लोग गुजरे उनके आमाल कैसे होते थे। तो उन्होंने फरमाया वो अमल कम करते थे लेकिन अजर ज्यादा पाते थे। अब देखें हमारा भी ये दिल चाहता है कि हम अमल इतना चाहे ना करना पड़े लेकिन हमें अजर बहुत ज्यादा मिल जाए। तो उन्होंने आगे से जानते क्या कहा, वो इन्होंने पूछा कि वो कैसे ऐसे करते थे कि अमल कम और अजर ज्यादा हो जाए। वो कहते हैं ऐसे कि उनके सीने हसद से बोझ से पाक होते थे। अल्लाह अकबर। और वो ये कहा करते थे अल्लाहुम्मा अग़फिरली वली मन ज़लमनी, ए अल्लाह मुझे भी माफ कर दे और जिस पे मैंने जुल्म किया उसको भी माफ कर दे, यानी अगर मेरे से कहीं किसी की गइबत हो गई हो, अगर मेरे से कहीं किसी की बुराई हो गई हो, कहीं किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई हो, तो जिस पे मैंने जुल्म किया अल्लाह उसको भी माफ करते, यानी उनकी ये दुआ करते हैं। क्योंकि बाज दफा तो इंसान को ये भी नहीं याद होता कि मैंने किसके साथ क्या किया, तो ये कितनी छोटी सी दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अग़फिरली वली मन ज़लमनी। तो ये दुआ फिर आप अगर आपको नहीं आती तो वैसे ही कह दें अल्लाह ताला मेरे से किसी के ऊपर भी ज्यादती होगी तो उसको भी माफ कर दे। तो अपनी माफी की फिक्र रखें, ना कि हम इस चीज की फिक्र रखें फलाने मेरे साथ ऐसा किया, फलाने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने जो किया वो उनके साथ है, उनको उसका हिसाब देना पड़ेगा उस दिन, लेकिन जो मैंने किया मेरा कौन हिसाब देगा, तो वो तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना। तो इसलिए ऐसे आमाल हमें सबको ये देखने चाहिए कि हमारी नामा आमाल में ना हो, हमारी किताब में ना लिखे हों, जिनमें हमारी नेकियां सारी गर्क हो जाएं और उस दिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हम खाली हाथ हों। क्योंकि जो इंसानों का मामला है वो बड़ा ही सख्त मामला है, ये सारे हमारी नेकियां ले जाएंगे, ये तहज्जुद, ये तरावी, ये जिक्र अजकार, ये कुरान पाक पढ़ पढ़ के जो रख रहे हैं, ये जो रोजे रख रहे हैं, ये जो नमाजों के लिए भाग रहे हैं, ये सब दूसरे लोग ले जाएंगे। और फिर जब ले गए तो फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास तो ऑलरेडी इतना ज्यादा सामान नहीं है आखरत के लिए, और अगर सबको देना पड़ गया तो हम किधर जाएंगे। इसलिए छोड़ दें लोगों के पीछे, हम अपनी इतनी कीमती नेकियां क्यों गवा दें? हमारी नेकियां क्या इतनी सस्ती हैं कि हम बांटते फिरें? इनकी तो हमें अशद जरूरत है, लिहाजा इनकी हिफाजत करें। नेकी करना एक काम और उसकी हिफाजत करना उससे बड़ा काम है। तो इसलिए बार बार रिमाइंडर है हम सब के लिए, क्योंकि ये हम बातें भूल जाते हैं। ये देखिए सारी मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, ये सब इंसानों के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, सब इंसानों के साथ मामलात की हैं। जैसे जिन्होंने अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत की, कयामत के दिन वो नूर के मिंबरों पे होंगे और अंबिया और शहदा भी रश कर रहे होंगे कि क्या वाह क्या शान है इनकी। तो ये भी तो मोहब्बत करना एक दूसरे के साथ है। इसके अंदर कहीं पे भी नहीं नमाज रोजे का जिक्र, जक़ात हज का जिक्र, सदका व खैरात का जिक्र। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है। 3 दफ़ा ये फरमाया तो सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन आदमी है, कितनी डरने की बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स कि उसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो, यानी जिसके हमसाया जो है वो उसके शरारतों से महफूज नहीं, यानी वो हमसाए को तंग करता है, हमसाए को की मसलन टो में रहता है, हमसाए के पे नजर रखता है, हमसाए के ऐब जानने की कोशिश करता है, हमसाए को तंग करता रहता है, किसी तरह से भी हो सकता है, लंबा लंबा जाके किसी के घर बैठे रहना। अब वो आपके हमसाए हैं, अब आप उठे जब मर्जी आपका दिल किया आप उठ के जाके तो उनके घर 2 2 घंटे बैठे हुए, दूसरे ने अपना काम करना है, उसने कुछ और करना है, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं मेरी खातिर तवाज़ो भी और चाय पानी भी पूछा जाए? तो ये नहीं होना चाहिए। अपने हमसायों के बारे में बहुत केयरफुल रहें कि हमने उनको किसी तरह अजियत नहीं देनी। अपनी गाड़ी ऐसी खड़ी कर देना कि हमसायों के तो को तकलीफ पहुंचे, या अपने घर के अंदर इतनी ऊंची आवाज के अंदर आपने कुछ भी लगाया हुआ, चाहे आपने तिलावत ही लगाई हुई इतनी ऊंची आवाज में कि वो दूसरों के घर तक पहुंच रही है, वहां पे कोई आराम कर रहा हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, कोई कुछ कोई अपना काम कर रहा हो सकता है, वो इरिटेट हो रहा है, उसको उसको मुश्किल हो रही है, आपने अपने मजे के लिए लगाया हुआ। तो कई चीज़ें हैं जो हमसायों को अजियत देने की हैं, या अपनी दीवारें इतनी या अपनी मंजिल इतनी ऊंची कर देना कि उनके घर की धूप ही बंद हो जाए। तो किसी तरह से भी हमसाए को हमने अजियत नहीं देनी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया वो मोमिन है ही नहीं जिसका पड़ोसी उसकी शर से महफूज ना हो। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि हम इस महीने में अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें जो कहीं हमारे नेकियों को बर्बाद कर सकती हैं। आज हम अल्लाह ताला का एक ऐसा नाम देख रहे हैं जो आज के दौर में बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि आज वो दौर हम देख रहे हैं जिसमें डिसेप्शन है, रियलिटी कुछ है और नज़र कुछ और आता है। ये आप हर जगह देखेंगे, आप सोशल मीडिया पे देख लें, हकीकत कुछ है और पीछे कुछ और है। आप जिधर भी जाएं जिंदगियों में देख लें कि कहीं पे भी आप देखें, कुछ एआई ने अपना काम कर दिया कि हकीकत कुछ है और एआई कुछ और दिखाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि रियलिटी क्या है और एआई क्या है। बात कोई और बंदा कर रहा होता उसी की आवाज के अंदर एआई के जरिए किसी और ने बात कर दी, अपनी बात पहुंचा दी उसी की आवाज बना के। मुझे तो किसी ने बताया कि अब आइंदा के लिए ये भी होगा कि लेक्चर भी एआई दिया करेगी, क्योंकि उसके पास सारी किताबें और उसके ऊपर लोड कर दी जाएंगी, तो फिर एआई के जरिए लेक्चर होंगे, जितना अच्छा वो लेक्चर दे सकती है वो तो नहीं कोई इंसान दे सकता, क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो किसी ने कहा भाई अब लेक्चर्स की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये भी काम एआई करेगी। इसी तरह बहुत सारी जॉब्स एआई ले गई, जैसे इसी तरह आप देखते हैं एक तस्वीर कोई की कोई दूसरे के साथ मिला भी नहीं होता, उसकी तस्वीर उसके साथ बना के ऐसे दिखा दी कि जैसे ये फलां बंदा वहां है। इसी तरह वो इंसान दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन उसकी शक्ल बना के किसी की जैसी अपना दिल करा वैसी बना के और फिर वो वैसी दिखाना शुरू कर दी। कोई पैदा हो रहा है लड़का तो उसको ये कह दिया कि भाई तुमने कुत्ता बनना है बिल्ली बनना है लड़की बनना है या क्या बनना है। जब आजकल ऐसी चीजें होने लगी तो हकीकत क्या है
हकीकत तो कहीं समझ नहीं आती और कहीं पीछे चली जाती है, और ऐसी चीज़ें जो फेक हैं, जो नकली हैं, जो मतलब रियलिटी नहीं है, जेन्युइन नहीं है, वो सामने आती हैं। ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कि वो एक ज़ात अल्लाह ताला की ऐसी है जो के अल हक है, हकीकत, रियलिटी, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, बरहक है और बरकरार रहने वाला है। अल हक का माना है, ये अल्लाह ताला के नामों में से है, वो ज़ात जो बरहक है और हक के साथ मौजूद है। अब ये भी आपने देखा ना कि कितने सारे लोग कहते हैं इसकी क्या दलील है कि एक खुदा है। अब ये तो सुन के भी इंसान को ना परेशानी हो जाती है कि खास तौर पे यंगस्टर्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अल्लाह ताला माफ करे कि इंसान को तो किसी को पूजना था तो उसने सोच लिया कि एक ज़ात है, कोई है, तो अपने ख्यालों के अंदर ही सोच के तो कह दिया कि वो खुदा है और बस है, और बस ये नहीं सोचा कि हाँ वो है भी या नहीं, इसकी कोई दलील है कि नहीं, और उन्होंने बस उसको मानना शुरू कर दिया। हालांकि अल्लाह ताला का नाम है अल हक, यानी जो मौजूद है, हकीकतन मौजूद है। ये कोई बातें नहीं है, ये कोई एआई नहीं है। ये जैसे दुनिया में आपको लोग ये फेक चीजें दिखा देते हैं, कोई चीज वैसी होती है नहीं है, और इश्तिहार उसका दे के उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कि जैसे पता नहीं वो क्या चीज है, फिर आप घर लेकर आते हैं तो उसको कोई वैसी नहीं भी निकलती। तो ये वो नहीं है, अल्लाह ताला अल हक है। ये नाम बेशक हर नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के दौर में इस नाम की हमें बहुत जरूरत है कि हकीकत क्या है। जहां पे हर तरफ झूठ है, बाजारों में देख लें, मीडिया में देख लें, दोस्त अहबाब में देख लें, रिश्तों में देख लें, कमाइयों में देख लें, हर तरफ झूठ, वहां पे हकीकत क्या है? और फिर ही लोग फिर ये भी डाउट करना शुरू जाते हैं, पता नहीं खुदा की जात भी है या नहीं, ये भी कोई हकीकत है या नहीं, ये भी ऐसे ही बातें बनाई हुई हैं। तो तब अलहक की तरफ आए। अलहक वो है जो हकीकतन मौजूद है, उसका वजूद है और उसकी माबूदियत के दलाइल भी मौजूद है और साबित है, जिसके इनकार की कोई भी गुंजाइश ही नहीं है कि कोई इनकार कर सके, इसलिए कि उसका उसका सबूत, उसका वजूद होना लाजमी है। वो ऐसी जात है, वो नजर नहीं आता मगर हर तरफ उसके वजूद के दलाइल मौजूद है, और वो खुद बताता है कि वो हक है। और ना सिर्फ वो खुद हक है, ट्रूथ है, सच्चाई है। हक क्या होता है? सच्चाई, रियलिटी, हकीकत, बरहक होना, वो बरहक है। इसलिए मैं आपको इंग्लिश में भी बताती हूँ, आप उर्दू में कोई नई लफ्ज समझ आता तो आपको इंग्लिश में समझ आ जाए, कि किसी एंगल से भी आपको समझ आए कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूं। तो उसकी जात बरहक, तो जो उसने यानी हक है, एक ट्रूथ, सच्चाई भी, जैसे हम कहते हैं ना, ये बात बिल्कुल हक बात है, ये हक बात कह रहा है, तो क्या मतलब होता है, यानी सच्ची बात कह रहा है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हक है और उसने जो बात कही वो भी सच्ची है, उसका कलाम भी हक है, और उसका कलाम जब हक है तो उसमें जो उसने वादे किए हैं मुलाकात के, वो भी हक है कि हम एक दिन मिलेंगे। और अगर ये मुलाकात भी हक है तो फिर आगे जो जन्नत या जहन्नुम है वो भी हक है, दोनों। तो ये सीक्वेंस है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठते थे तहज्जुद के लिए तो क्या फरमाते थे? अल्लाहुम्मा अंता नूरु समावाती वल अर्द लकल वलकल हम्दु अंता मुल्कु समावाती वल अर्द वलकल हम्दु अंतल हक ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق के अल्लाह तू हक है, तेरा वादा भी हक है, सच्चा है, तेरी मुलाकात भी सच्ची है, तेरी बात भी सच्ची है, जन्नत भी सच है जन्नत, जहन्नुम भी सच है, नबी भी सच है। अल्लाहु अकबर। तो क्या चीज रुकावट बनती है हक को मानने में, जब इतनी सारी फेक चीज़ें हों तो फिर इंसान हर चीज़ को फेक समझने लगता है। जब हक और बातिल को गड़मड़ कर दिया जाए तब भी मुश्किल होती है समझना कि हक क्या है। और शैतान भी इसको ऐसे करके पेश करता है कि जो जैसे इन यूथ के जहन में, यंगस्टर्स के जहन में ऐसी बातें डाल देना कि पता नहीं है भी कि नहीं, ऐसे ही बातें करते हैं, पता नहीं इंसान को ज़रूरत थी तो ऐसे ही उसने कह दिया। तो अल्लाह ताला हक है और हक के लिए हमें खड़े होना चाहिए। कि आपको पता है कि ये सच्चाई है तो उस वक्त, चाहे वो कोई भी बात है, ये नहीं कि सिर्फ ये बात, बल्कि कोई भी बात जो हक है, क्योंकि अल्लाह ताला हक है, वो हक को ही पसंद करता है, तो इसलिए हक के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए एक मुसलमान को, क्योंकि वो हक पे ईमान रखता है। अल हक उसका रब अल हक है। और जब हक के ऊपर बात आए तो फिर ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं या क्या हैं, मैं इनके खिलाफ कैसे कोई फैसला दूं या कोई बात करूं, इनको पसंद नहीं आएगी, या मेरी दोस्त है इसको पसंद नहीं आएगी। नहीं, जो हक है वो हक है। आप सोचें कि एक दफ़ा एक मुसलमान था, उसने किसी के घर से आटे की बोरी चोरी कर ली। वो आटे की बोरी के नीचे सुराख था जिससे कि आटा निकलता गया और उसके घर तक पूरी लाइन लग गई। उसने सोचा कि ये तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने एक यहूदी के घर जाके उसको कहा कि ये आटा तुम अपने पास मेरी अमानत रख लो। उस जमाने में लोग इस तरह रखा करते थे, उसने रख ली। अब कुछ अरसा गुजरा, वो जो जिसके घर से चोरी हुई थी वो जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाके उसने ये शिकायत की कि मेरे घर से तो इस तरह से चोरी हो गई। चोर का पता लगाने के लिए देखा गया तो देखा गया कि यहूदी के घर तक तो आटे का सारे निशान पड़े हुए, यहूदी को पकड़ा गया। तो उसने कहा कि मैंने तो नहीं चोरी की। जब बहुत तहकीक की गई तो पता चला कि ये मुसलमान है जो चोर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि वो मुसलमान था और दूसरा यहूदी था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दिया। क्यों? इसलिए कि हक यही था, सच्चाई यही थी। तो ये नहीं देखना चाहिए कभी कि कौन है जिसके लिए मैं बोलूं, ये इसके लिए बोलूं कि नहीं बोलूं, और अगर बोला तो फिर ये ना हो कि ये मुझसे नाराज हो जाए, और ये ना हो कि फिर ये मुझे अपने दोस्त ना बनाए। नहीं, हक के लिए खड़े होना हर मुसलमान का काम है, क्योंकि वो अल हक के ऊपर ईमान रखता है। ये पूरा जिंदगी को आपकी चेंज कर देता है, जब आप कहते हैं ना कि हक के ऊपर आप ईमान रखते हैं, अल हक है वो, तो फिर जहां पे भी हकीकत है, जो सच्चाई है, उसके ऊपर खड़े हो जाना। और सच्चाई क्या है? एक तो हमने सच्चाई की जो हकीकत है उसके अपने पैमाने बनाए हुए, अपने क्राइटेरिया बनाए हैं। मसलन है कि हमें ये लगता है कि कामयाबी इसमें है कि किसी की लेग पुलिंग की जाए और फिर ऊपर चढ़ा जाए, फिर प्रोमोशन मिलेगी। जब इसको नीचे खींचूंगा तो मैं ऊपर जाऊंगा। झूठ बोला जाए तो फिर पैसे बचाए जा सकते हैं। टैक्स में झूठ बोला जाए, चाहे वो कहीं बुजुर्ग वाला जाए, उससे पैसे बचेंगे मेरे तो कामयाबी मिलेगी मुझे। इसी तरह हेरा फेरी करूंगी तो बचत होगी तो कामयाबी होगी। इसी तरह फिर मैं, अगर मुझे इज्जत पानी है तो मैं बड़ा बन बन के दिखाऊंगी उन लोगों में, अपनी बड़ाइयाँ शेखियाँ करूंगी तो मुझे इज्जत मिलेगी। और इसी तरह मैं अगर बदला लूंगी किसी से तो लोगों के अंदर रोब बैठेगा कि ये कोई बड़ी चीज़ है, जबकि अलहक कुछ और बताता है। वो बताता है इससे उलट कि माफ़ कर दोगे तो इज्जत बढ़ेगी, आजी इख्तियार करोगे तो तुम बड़े बनोगे, बड़े बनने से नहीं बड़े बनोगे, झुकने से बड़े बनोगे। माफ़ करने से तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, इज्जत कम नहीं होगी। सच बोलोगे तो उसमें कामयाबी होगी। तो अलहक कुछ और बताता है, हक कुछ और है और हमने कुछ और समझा हुआ। तो जिंदगी को इसके मुताबिक गुजारना ये जरूरी है। और इस्लाम हक है, इस्लाम के अलावा किसी और चीज को भी तलाश करोगे वो हक नहीं है, फिर वो गुमराही है, फिर वो दलालत है, फिर जाके कहीं गुमराही के गड़े में गिर जाओगे। लेकिन हम उस चीज को भी इतनी नई अप्रिसिएशन देते कि हम जिस दीन के ऊपर हैं वो दीन अल हक है, और उसके ऊपर रहना हमारी कामयाबी है। फिर हम सोचते हैं कि खुशी किस में है? खुशी इसमें है कि मेरी जॉब बड़ी हो जाए, खुशी इसमें है कि मेरे पास ठाठ बाठ हो, ऐश आराम हो, मेरे बच्चे फलां फलां जगह पे, उनके बड़े बड़े ओहदे हों, मेरे पास ये गाड़ी और ये घर हो, तो इसमें खुशी है। जबकि हमें हक अल्लाह ताला ने बताया, कुरान में बताया कि हक क्या है, खुशी किस में है, हकीकी खुशी किस में है, वो हकीकी खुशी तो किसी और चीज़ में, ये तो खुशियां नहीं लाती। इसीलिए जब हम इन चीज़ों को पा भी लेते हैं तो हमें समझ आती है कि ओहो इसमें तो खुशी थी ही नहीं, खुशी तो किसी और चीज़ में थी। अल्लाह ताला फरमाता तुम खुश होना चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो ये रास्ता जो कुरान बता रहा है ये है हक, इसके ऊपर चलो। तो ये तो वही चलेगा या वही जानना चाहेगा जो ये समझता होगा कि मुझे रास्ता मालूम करना है, मुझे कोई राह दिखा दे, मैं लॉस्ट हूँ। मगर जो समझता है कि मैं तो खुद ही बहुत बड़ी चीज़ हूँ, वो कहाँ किसी से रास्ता पूछना चाहेगा। फिर हम कहते हैं मैं अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ, ये सब अल्लाह की खातिर, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये हक तो ना हुआ, तो अपनी बोलने में भी हक लाना कि हक मैं बोलूं, सच बोलूं या नहीं। तो हम कहते हैं ना हक बात करो, तुम ऐसे ना कहो, हक बात करो, तो क्या मतलब होता है उसका, जो यानी जो सच्ची बात है वो करो। अल्लाह खुद भी सच्चा, उसका कलाम भी सच्चा, और वो एक सच्ची हकीकत है, वो ऐसे बातें नहीं है जो किसी ने बस सोचा और बना के बैठ गया, या कोई किसी ने जरूरत महसूस की है खुदा की और वो बना के बैठ गया। उसका कलाम सच होने का एक वाकया आता है कि एक शख्स ने ये जानना चाहा कि कौन सा दीन सही है, तो बड़ी खूबसूरत किताबत भी करता था उसने, ये तरीका किया कि तौरात इंजील और कुरान की बड़ी खूबसूरत किताबत की और बीच में कमी बेशी करती। फिर तौरात को लेकर उलमा यहूद की खिदमत पेश किया, उन्होंने उसको पढ़ा और खूबसूरत किताबत देख के उसको इनाम दिया। इंजील का नुस्खा ईसाइयों के पास लेके गया, उन्होंने भी इसकी मेहनत को बड़ा सराहा और कहा कि बड़ी अच्छा तुमने काम किया, और बड़ी रकम देके उसको, क्योंकि उसने बड़ी खूबसूरत राइटिंग की भी थी, उसको उसका नुस्खा खरीद लिया। इसके बाद कुरान करीम का नुस्खा उलमाए इस्लाम की खिदमत में लेकर आया, तो उन्होंने कमी बेशी देखी, तो उन्होंने पकड़ा और उसको मारा और उसको हाकिम के पास लेके गए। हाकिम ने देखा कि कुरान की तहरीफ की है इस जुर्म में, तो इसको कत्ल का हुक्म दे दिया। जब उसने ये देखा तो उसने कहा कि मैं तो कलमा पढ़ता हूँ, उसने शहादा ली और उसने कहा मैं मुसलमान होता हूँ, इसलिए कि मैंने तो सिर्फ इसलिए किया था कि मैं जानना चाहता था कि कौन सा दीन है जो सही है और महफूज है, और मेरे इस तजुर्बे से साबित हो गया कि दीन इस्लाम ही हक है, और ये किताब सच्ची है और इसमें कोई तहरीफ नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला की जात अल-हक है, इसको मानने का ये है कि हम जब इस नाम पे अल्लाह ताला के ईमान रखते हैं, तो इसके बाद हम हर एक को, जिसको भी कोई लोग कुछ समझते हैं कि ये भी हमारे काम संवार सकते हैं, चाहे कोई फरिश्ता है, चाहे कोई पैगंबर है, चाहे कोई औलिया अल्लाह है, या कोई भी इंसान है, पीर है, फकीर है, कोई दुनिया से जा चुका, ये कोई कुतुब है, कोई अजमेर है, कोई गौस है, कोई कोई भी है, उन सब से उम्मीदें छोड़ के इंसान उस एक हकीकी रब, जो सच्चा रब है, उसकी तरफ इंसान आता है। और ये अलहक उसका नाम ही हमें बताता है कि हमने उससे सारी उम्मीदें वाबस्ता रखनी है, क्योंकि वो सच्चा है और उसने बताया है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई काम बना नहीं सकता। जब इंसान ये सोचता है ना, धोखा कहाँ से खाता है, जब वो ये देखता है हाँ देखो अंबिया कराम भी तो उनके पास मुजजात होते थे और औलिया कराम की करामतें होती थी और ऐसे हो गया, और वो सच्ची झूठी कहानियां कई औलिया कराम की खुद ही बना बना के आगे बताते रहते हैं, जो उनकी करामतें थी वो अपनी जगह है, लेकिन बाज तो ऐसी अक्सर ही बल्कि कहानियां ही बनाई हुई हैं। अंबिया के मोजाक बिल्कुल सच्चे हैं, उनको लेके सोचते हैं कि अब पे वो जो उस वक्त ये कर सकते थे तो अब भी हमारे लिए भी कर सकते हैं, और औलिया अल्लाह में देखे उनकी ये करामते थी तो हमारे लिए भी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ सिर्फ एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के लश्कर की तरफ एक मट्टी कंकरियों की फेंकी आपने, और अल्लाह ताला की कुदरत से सारे लश्कर की आंखों में वो जाके मट्टी पड़ गई और उनको कुछ नजर नहीं आता था, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये मौजजा था ना नबी का, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, जब आपने ये फेंकी ना, तो आपने नहीं फेंकी, अल्लाह ताला ने फेंकी थी कि उनकी आंखों तक पहुंच जाए। यानी अल्लाह ताला की तरफ से था ये। यानी जितने भी मोजजात या करामात किसी की भी आपको सुनाई जाती हैं, तो उसमें ये ना सोचें कि ये उनका अपना कमाल था, बल्कि हम कुरान करीम में पढ़ते हैं कितनी दफा कि पैगंबरों को जब लोग कहते थे आप क्यों नहीं अजाब ले आते, आप क्यों नहीं ये जिससे हमें धमकाते हैं वो क्यों नहीं ले आते, तो वो कहते थे कि हमारे बस में नहीं है, ये हम नहीं इसके ऊपर कोई बस रखते, ये तो अल्लाह ताला का मर्जी है कब करे। कुल इन्नी ला अमली कुली नफसी नफ़ा वला दर्रा, नबी आप कह दें इनको कि मैं तो अपनी जान के बारे में भी कोई नफा या नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। या कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमा दिया आपके बता दें इनको, अगर मैं रखता होता तो मैं अपने लिए सारे फायदे कर देता, मेरी तो जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ही ना आती। इतनी साफ साफ आयात पढ़ के भी, अल्लाह का कलाम को मानते हुए भी कि ये हक है, तो फिर भी इंसान अगर ऐसा करे कि यही शिरकिया अकायद रखे, तो ये तो बिल्कुल कुरान के खिलाफ है। कुरान पे फिर कैसा ईमान रहा? तो अकीदा यही होना चाहिए कि अल्लाह ताला की कुदरत से सब चीज होती है, उसकी मशीयत से सब की चीज होती है, और हक यही है। और हक हम ये भी कहते हैं फलां को उसका हक दे दो, फलां को उसकी हक पहुंचा दो, जैसे हम कहते हैं इस बेटे ने तो माँ बाप का हक अदा कर दिया, यानी जैसा करना चाहिए था वैसा किया। तो हमें अपनी जिंदगी भी जैसे अल्लाह ताला ने बता दी वैसे ही गुजारनी चाहिए, और उसका हक पहचाने हम, ये नहीं कि अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, इन्होंने अल्लाह ताला की कदर नहीं की जैसे कदर करनी चाहिए थी। तो अगर इंसान वो अल्लाह ताला का हक, जो इबादत का हक सिर्फ उसका है कि हम उसकी इबादत करें, उसको किसी और को देते हैं और शामिल करते हैं, तो हमने ये भी डंडी मार दी, झूठ साथ शामिल कर दिया कि कोई और भी है जो हमारे काम संवार सकता है। तो सच्चाई पे जिंदगी गुजारें हम इस नाम को लेकर, और अपनी अमल के लिए क्या देखते हैं, सच्चाई पे हमने जिंदगी गुजारनी है, और सच्चाई वही है जो अल्लाह ताला ने बता दी। नंबर टू, हमेशा सच बोलना। नंबर थ्री, कभी सच्चाई को छुपाना नहीं है, हमारे सामने हक हो तो उसको छुपाए नहीं। और नंबर फोर, सच्चाई से मोहब्बत करनी, सच्चाई जिस तरफ भी हो हमने उस तरफ ही रहना है, चाहे वो हमारे प्यारे ही क्यों ना हो, हमारा खानदान है, हमारे दोस्त है, हमारी बरादरी है, कुछ भी है, मगर जो हक है उससे मोहब्बत करना सीखें और इसको छुपाएं नहीं। तो अल्लाह ताला हमें इस नाम के ऊपर मुताबिक चलने की भी तौफीक अता फरमाए। आज का जो जिक्र है वो ऐसा जिक्र है कि अगर आपने वो जिक्र कर लिया, हर दिन आपने करना है, लेकिन अगर आपने वो जिक्र कर लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सुबह के वक्त ये कलिमात पढ़ लिए, तो मैं खुद उसको हाथ से पकड़कर जन्नत में दाखिल करूंगा। ये सिलसिला सहीहा की हदीस है, खुद दाखिल करूंगा उसको जन्नत में। तो कितनी बड़ी ये बात है, और कितना छोटे से कलिमात हैं, यानी थोड़े से कलिमात हैं, लेकिन इनके अंदर वजन बहुत ज्यादा है, अगर आप इसको सोच समझ के आप इनको अदा करें। क्या है? रदीतु बिल्लाही रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, कि मैं राजी हूं अल्लाह के रब होने पे, वाकई राजी हैं उस हक के हक होने पे, क्या वाकई आप उसको रब मानते हैं और उसके ऊपर राजी भी हैं? तो फिर कहीं और जाने की जरूरत है, फिर उससे ही सिर्फ मांगे, फिर उसके किसी फैसले पे एतराज ना करें, फिर उसके हर फैसले पे राजी रहें, फिर उसके जितने उसने शरीयत में अहकामात दिए हैं उनको दिल से माने और उनके ऊपर खुश हुआ करें कि ये मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया, और उसके ऊपर भी राजी रहें। रब आने का ये मतलब है वबिल इस्लामी दीन, और इस्लाम को दीन होने पे मैं राजी। अब इस्लाम के अलावा जो गैर मुस्लिमों की चीज़ें हैं, ईसाइयों की, यहूदियों की, हिंदुओं की, उनकी चीज़ें अपने पास लाने की ज़रूरत नहीं, और ना उनसे मोहब्बत करने की ज़रूरत है कि वो क्रिसमस करें तो हम भी करें, वो वैलेंटाइन करें तो हम भी करें, वो हालोवीन करें तो हम भी करें, वो होली मनाएं तो हम भी मनाना शुरू कर दें, कोई चीज ही नहीं हमने छोड़ी। तो फिर क्या इस्लाम को दीन होने पे हमें हम राजी हैं? फिर तो हमें इस्लाम दीन पसंद ही नहीं, ईद हमें वैसे बोर लगती है। तो रदीतु बिल इस्लामी दीना भी है कि इस्लाम दीन हो मेरे को, यानी दीन इस्लाम के ऊपर भी मैं राजी हूँ, वह भी मोहम्मद नबी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे भी, नबुवत पे भी मैं राजी हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत के ऊपर राजी होने का मतलब क्या, उनके तमाम अहकामात, उनकी तमाम बातें मुझे पसंद है, मैं किसी भी उनकी बात को मुझे उसके ऊपर ना कोई एतराज़ है और ना कोई इसके ऊपर मुझे शिकवा है। और आज की दुआ बहुत प्यारी दुआ है, और चूंकि हम रमज़ान में शुरू में तो बड़ा जोश दिखाते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारा जोश ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, तो बेहतर है कि हम एक दुआ मांग लिया करें अल्लाह ताला से, रब्बी आइन्नी आला जिक्री का व शुक्री का व हुस्नी इबादतिक, तो हम थकेंगे भी नहीं, हमारा शौक भी रहेगा कि अल्लाह ताला तू मदद फरमा हमारी अपना जिक्र करने पे, शुक्र करने पे और अच्छी इबादत करने पे, कि अल्लाह तू मेरे से करवा लेना, यानी ये तौफीक हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, मदद मांग रहे हैं, क्योंकि हमने तो खुद अपने आप पे भरोसा नहीं किया कि हमारे अंदर कोई कुव्वत ताकत है या हमारे अंदर कोई इतनी बड़ी यानी सलाहियत है, बल्कि अल्लाह हमें तेरी मदद चाहिए, तेरी मदद के बगैर हम ये नहीं कर सकते, तो ये दुआ हमेशा मांगते रहना चाहिए, और ख़ास तौर पे नमाज़ों के बाद इस दुआ को मांगा करें, कि यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, ताकि हमारी नमाज़ें भी अच्छी हों, हमारी बाकी इबादत भी, हमारा जिक्र भी, और हम शुक्र करने वाले रहें और अच्छी अल्लाह ताला हमसे इबादत करा ले। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।